सोच विचार के साथ। मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अस्सलाम वालेकुम, सोच विचार में शामिल होने का शुक्रिया। आज हम सोच रहे हैं कि ये जो आने वाली चीज़ है बजट, बजट पे लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं और हर साल बजट पे बड़ा शोर मच जाता है, तो आज थोड़ा सा बजट पे हम और बात करें। एक हमने सोच विचार जो पॉडकास्ट है उसका एपिसोड किया था बजट पे एक एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी वाजिद राणा साहब से, और उन्होंने बड़े तफसीलन हमें समझाया था कि बजट कैसे बनता है और क्या होता है बजट में। तो आज वाजिद राणा साहब को मैंने फिर कोशिश की है पकड़ने की। तो वाजिद राणा साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इनको इन्होंने माशाल्लाह बड़े बजट बनाए हैं। सिंध के फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, बड़ा इनका लंबा करियर सिविल सर्विस में रहा है और बड़े मशहूर और वेल नोन सिविल सर्वेंट हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल ऑनेस्ट अच्छे सिविल सर्वेंट हैं, कॉम्पिटेंट आदमी हैं। तो वाजिद राणा साहब अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी।
राणा साहब बजट फिर आ गया, हर साल बजट आ जाता है और हर साल शोर मच जाता है और हर साल बड़ी बातें होती हैं, तो बताइए कि इस साल हम बजट में क्या एक्सपेक्ट करें?
देखिए, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा बजट इस गवर्नमेंट का आखिरी बजट है बिफोर इलेक्शन, तो इसलिए हमारा अंदाज़ा यह है कि इस बजट के अंदर वो तमाम पॉपुलर मेजर्स होंगे जो आवाम के लिए कोई खुशखबरी ला सकते हैं, और वो खुशखबरी ये दो तीन तरीके से दी जा सकती है। पहला तो ये है कि किसान पैकेज को दोबारा रिपीट किया जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर अभी भी किसान काफ़ी ज़्यादा अपनी क्रॉप्स की कीमतें वसूल नहीं कर पा रहे।
तो किसान पैकेज, किसान पैकेज का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब आपका किसान पैकेज से?
किसान पैकेज में जिस तरह आपको याद होगा पिछले साल के बजट में 400 अरब रुपए का, बल्कि 400 अरब प्लस का एक किसान पैकेज अनाउंस हुआ था, और इसी तरीके से 100 अरब का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किसान पैकेज ऐलान किया था।
उसमें ये फार्मर्स को सब्सिडीज मिलेगी,
इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी थी, पेस्टिसाइड की सब्सिडी थी, इसमें बिजली की सब्सिडी थी, इसी तरह पोटैश पे सब्सिडी दी गई थी, सीड पे सब्सिडी दी गई थी। तो इसी तरीके से वो सब्सिडी दोबारा उसको रिपीट किया जाएगा ताकि किसानों को कोई रिलीफ दिया जा सके और उनके वोट को बाय किया जा सके। इसी तरह मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स ब्रैकेट जो है, जो टैक्सेबल इनकम का ब्रैकेट है, उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि उनको खुश किया जा सके। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आम तौर पे 10% बढ़ती रही हैं, इस साल उम्मीद है कि 15-20% बढ़ेंगी ताकि पेंशन और जो तनख्वाह याफ्ता तबका है उसको भी खुश किया जा सके। तो इस तरीके से तकरीबन काफ़ी हद तक पॉपुलर मेजर पे ये बजट बेस होगा, और क्योंकि इस वक्त ये याद रखना चाहिए कि चूँकि हमारी बारहवीं IMF से 200% कोटा के ज़्यादा है, इसलिए अभी भी IMF प्रोग्राम ख़त्म होने के बावजूद हम पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग में हैं, जिसका मतलब यह है कि वो हर साल एक पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग इवेल्यूशन करके वो रिपोर्ट निकाला करेंगे, विच मीन्स कि हमारी इकोनॉमी अभी भी अंडर सर्वेलेंस है। लेकिन इस साल वो इलेक्शन की वजह से कोशिश ये करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा बढ़ा सकें और ये पॉपुलिस्ट मेजर्स को एडजस्ट कर सकें ताकि अगले साल इलेक्शन में वो एक स्पेस सेविंग के साथ जा सकें। इसमें चूंकि सर्कुलर डेट भी तकरीबन इस वक्त 650 अरब जमा हो चुका है, जिसमें से 350 अरब इस वक्त फ्लो है, तकरीबन इतना ही इस वक्त स्टॉक है। तो जब तक आप उस सर्कुलर बजट को कुछ हद तक रिजॉल्व नहीं करते, आपकी जो सप्लाई साइड है वो ठीक नहीं होती।
तो लोड शेडिंग, ये तो फिर आपने काफ़ी सारी बातें बता दी हैं जिसपे मुझे तो बहुत सोचना पड़ रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने हैं, और मानता हूँ हर डेमोक्रेसी करती है, कोई बुरी बात नहीं, हर डेमोक्रेसी करती है, तो करना भी चाहिए, कोई इसमें खदशा नहीं है। बट ये कि हमारे पास फिस्कल स्पेस कितनी है, अभी 2 साल हुए, बल्कि शायद हम फंड प्रोग्राम से निकले हैं, और हमारे माशाल्लाह फिस्कल हालात, आपको पता है डेट जीडीपी रेशो बढ़ रहा है, आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफ़ी बढ़ रहा है, आपको पता है हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन भी थोड़ी नाजुक हो रही है, तो क्या इस वक्त ये इतना बजट डेफिसिट बढ़ा सकेंगे? और अगर सर्कुलर डेट भी बीच में शामिल करें तो फिर तो आप जो कह रहे हैं, जो इन्होंने डेफिसिट का माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर लिया था कि 4.5-5 तक तो डेफिसिट ले गए थे, तो यानी कि फिर दोबारा बढ़ जाएगा 7-8 तक?
देखिए, उसमें जो इस वक्त सूरत हाल है फिस्कल डेफिसिट या डेट बारो, जो जीडीपी बारोइंग की, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिस्कल स्पेस इसलिए ख़त्म हो रही है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 40-45% या 50% ऑलरेडी आपकी डेट सर्विसिंग में जा रहा है। आपको याद होगा 2005-06 में डेट टू जीडीपी रेशो, सॉरी डेट सर्विसिंग लाइबिलिटी आपकी 29% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज पे आ गई थी। उसमें अगरचे के पेरिस क्लब रिस्केजुलिंग का भी किरदार था और लिबरल लैंडिंग भी थी इन द शेप ऑफ ग्रांट, उस वजह से आपकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और आपकी डेट सर्विसिंग 29% पे चली, वो अब वापस 45-50 की तरफ जा रही है। आप एक पॉपुलर इकदाम की वजह से अपना जीडीपी, आपका डेवलपमेंट बजट भी उसको बड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप इलेक्शन से पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। उसमें रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, और उस वजह से आपको आपका डेवलपमेंट बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये पॉपुलर मेजर लेते हैं तो आपको करंट बजट भी बढ़ाना पड़ेगा,
तो यानी कि पूरा बजट बढ़ाना पड़ेगा करंट और डेवलपमेंट। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उनको अगर इलेक्शन से पहले ख़त्म करना है तो वो तो बढ़ाना, वो तो आपको काफ़ी एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी साइड पे आपका सर्कुलर डेट भी है, तो राना साहब मुझे ये बात बताएं कि फिर अगर इस पे चलेंगे, इस सारे जो निज़ाम का, मतलब कि आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, आपने डेट भी बढ़ाना है और आपने सैलरीज भी बढ़ानी है, सर्कुलर डेट भी पे ऑफ करना है, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि क्योंकि बजट ईयर है तो टैक्सेशन तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकेंगे, ठीक है, तो डेफिसिट बढ़ेगा, तो ग्रोथ पे इसका असर पड़ेगा या कि ग्रोथ हमारी माशाल्लाह इन प्रोजेक्ट की वजह से अच्छी आएगी या बढ़ रही है हमारी ग्रोथ की? नहीं,
ग्रोथ का तो ये है कि जी जितनी आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा उसका करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव या ऑफसेट हो जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स। और वो फाइनेंशियल सर्विस इस वक्त भी, लास्ट ईयर आपकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 2% ग्रोथ आई है फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप जब फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंसिंग करते हैं, यू बोरो फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, करस्पॉन्डिंगली आप उनको प्रॉफिट अपने ज़्यादा करा देते हैं और वो आपकी जीडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो मुझे अंदाज़ा है कि जी आपको जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस ख़राब हो रहा है, इमीडिएट फ्यूचर में आपकी एक्सपोर्ट इम्प्रूव होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि वो तकरीज कम हो रही है, तकरीबन 20-20.5 के दरमियान इस साल हिट करेंगी 26 के पीक से। तो आपका ये है कि अगर दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इंपोर्ट्स में रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाते चले, अब इंपोर्ट के अंदर रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाते चाहते हैं और उसमें अगर ज़्यादा मशीनरी आ रही है तो आप उसको एक्सपेंसिव करेंगे, वो आप आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तकरीबन लिमिट पे पहुंच चुके हैं, 40-50% पेट्रोल पे और जो आपका डीजल है, तो आपके पास वहां पर भी बड़ी कम स्पेस है स्वाइस के कि आप सो कॉल्ड लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं पार्शियली टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स। तो अगला साल ये है कि आप IMF से अभी आपको 8 महीने हुए हैं निकले हुए, और जो आपकी अभी से जो फॉरेन बोरोइंग है, यू आर बोरोड $2 बिलियन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज चाइना बैंक टू सॉर्ट ऑफ फाइनेंस योर बजट, तो वो सूरत हाल थोड़ी सी का दिगर गुम होती हो जा रही है, और वो लग रहा है कि अगर पॉपुलर मेजर्स आए तो उससे थोड़ी सी मजीद ये चीज बिगड़ेगी।
तो इसका मतलब ये है कि जी अब ये सारा जो इंतजार बन रहा है, इसमें हम पॉपुलिस्ट मेजर्स में, और जैसे कि मैंने कहा ये इसमें कोई बुरी बात नहीं, हर डेमोक्रेसी करती है, तो पॉपुलिस्ट मेजर्स में हम अपना ज़रूर बजट डेफिसिट बढ़ाएंगे और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो, पर उसका एक दो चीज़ें हैं कि ग्रोथ पे तो कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के प्रॉफिट से थोड़ा ग्रोथ शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, पर जो रियल सेक्टर है आपका वो डिक्लाइनिंग सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर आपका डिक्लाइनिंग सेक्टर है, तो यानी कि जो इंडस्ट्री है उसका कोई हमें सिनारियो, फॉरवर्ड लुकिंग सिनारियो अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी चीज़ ये कि लगता है कि एम्प्लॉयमेंट भी कोई खास नहीं बढ़ रही। ठीक है,
एम्प्लॉयमेंट
भी नहीं बढ़ेगी, फिर क्या होगा?
देखिए, अब बात यह है कि अगर आप के जो लोन्स बाहर से आ रहे हैं उस लोन्स के साथ ईसीपी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी भी अगर उसी मुल्क से है और वो लेबर भी अपने मुल्क से ला रहा है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट वैसे भी नहीं बढ़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वो अनस्किल्ड लेबर और पार्शल स्किल्ड लेबर में बढ़ेगी। जो हाईटेक जॉब्स हैं वो आपके पास वैसे भी नहीं मिल रही हैं आपको, बिकॉज वो एट के साथ ईसीपी कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज मैन पावर भी टाइड अप है, मशीनरी भी टाइड अप है, तो इसलिए आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं और आपकी एक्सपोर्ट नीचे जा रही हैं। आप LSM को उठा के देख लें, उसकी भी कोई परफॉर्मेंस 10 महीने की इतनी बेहतर नहीं है।
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मैंने तो सुना है कि 7% से ग्रो कर रही है।
नहीं, वो अचानक एक बम्प आता है, यानी 6 महीने तक वो नेगेटिव रहती है पर अचानक वो बम्प आता है। वो बम्प कैसे आ रहा है वो उसकी डिटेल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि आप अचानक LSM के अंदर कैसे आप कर लेते हैं। जो मार्केट से आप पूछें, मार्केट ये कहती है कि जी आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस नहीं है तो आपने एक्सपोर्ट क्या करना है, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर ठीक है शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन की, ये भी आपका पॉइंट ठीक है कि जी हर डेमोक्रेसी जो है वो आखिरी साल में पॉपुलरिस्ट मेजर देती है, लेकिन इशू यह है कि आप इस स्टेज पे अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इससे आप अंदाजा कर लें कि पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में $25 अरब कॉन्ट्रैक्ट किए डिफरेंट लोन्स, ये गवर्नमेंट अब तक $45 बिलियन लोन कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। अब उसका लामहाला असर जो है वो आपकी डेट सर्विसिंग पर पड़ेगा,
एक तो वो पड़ेगा, दूसरा आप जो बात कह रहे हैं वो भी बड़ी मजेदार बात है, समझने वाली बात है कि ये जो एक तो एड जो आती है जिसको हम समझते हैं कि वो हमारे बड़े फ़ायदेमंद है, वो जो एड आती है उसकी अपनी शरायत होती हैं, उसके अपने निज़ाम होता है जिसके अंदर वो आपको अपनी साथ चीज़ें भी बेचते हैं, अपने वो साथ इंटरेस्ट रेट भी लगाते हैं, साथ आपकी वो क्या कहते हैं अपने बंदे भी भेजते हैं स्किल्स वाले, तो हमारे जो इंडस्ट्री पर असर पड़ता है उस पर हम इवेल्यूएट ही नहीं करते। ठीक है, दूसरा जो हम लोन्स लेते हैं हमें अगेन पता नहीं कि हम लोन्स क्या वो प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या वो सिर्फ करंट बजट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में मुझे समझ नहीं आती है बोरिंग और एड का फ़ायदा होता है कि नहीं होता। या आप सेक्रेटरी AD भी रहे, बताएं इनका फ़ायदा होता है?
देखें, जो तो आप बोरिंग कर रहे हैं टू फाइनेंस करंट अकाउंट करंट बजट, उसका तो आपको कतई तौर पर फ़ायदा नहीं होता। और इस वक्त काफ़ी हद तक जो बोरिंग है वो हो रही है टू फाइनेंस योर बजट, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है बजट का वो इस तरीके से हो गया हुआ है, इट्स प्रीटी रिजिड।
मतलब वो रोजमर्रा खर्चे के लिए आप बोरो कर रहे हैं, आप कुछ आप बनाने के लिए नहीं, आप बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा।
आपका 4 ट्रिलियन इस वक्त रेवेन्यू है, उस 4 ट्रिलियन में 1.4 to 1.5 ट्रिलियन आपकी डेट सर्विसिंग चली जाती है, 1.8 ट्रिलियन आपका चला जाता है सूबों को, दैट मेक्स 3.3 ट्रिलियन आपके पास बाकी बचता है 700 अरब रुपया। 700 में आपने फेडरल गवर्नमेंट की को भी फाइनेंस करना है, आपने डिफेंस को भी फाइनेंस करना है, आपने डेवलपमेंट बजट को भी फाइनेंस करना है, तो लामोहला आपको डिफेंस के लिए और फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग के लिए और पावर सेक्टर सब्सिडीज के लिए बोरोइंग करनी पड़ रही है, वो डोमेस्टिक बोरोइंग भी है उसके अंदर फॉरन भी है, और इस वक्त फॉरन बोरोइंग आप कर रहे हैं आपके करंट अकाउंट फाइनेंसिंग के लिए, बिकॉज आपकी FDI भी नहीं आ रही और आपकी प्रोग्राम लेंडिंग भी IMF के बजट के बाद स्लो डाउन हो गई है, और प्रोग्राम लैंडिंग हमेशा आपकी बजट फाइनेंसिंग के लिए होती है, वो प्रोडक्टिव कभी भी नहीं होती।
ठीक है, तो ये बताइए कि फिर अगर हमारे बजट में ये हालत है, तो अब जो आगे को देखें, अगर मैं देखूं तो फिर सिचुएशन तो ये आ रही है कि ठीक है इलेक्शन हो जाएगी, पर हमारे ये चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई इंपोर्ट्स में, तो कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ेगी और कुछ ना कुछ आपकी इंडस्ट्री और कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ेगा, तो अगेन वो इकॉनमी में तो एक किस्म का रिसेशनरी इम्पैक्ट ही आएगा ना। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये है कि ये सब का एक्सचेंज रेट पे भी प्रेशर पड़ेगा इवेंचुअली।
जी बिल्कुल पड़ेगा, देखें ना अभी भी आपने जो जनरल परसेप्शन है आपका, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो आपकी करंट एक्सचेंज रेट के से अपना रिकनसाइल नहीं करता, और लोगों का आम ख्याल ये है कि जी आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है इट इज़ फार बिलो द मार्केट वैल्यू। अब उसमें जो आपकी जो इस वक्त सीपैक का है वो आपको उसी वक्त फ़ायदा दे सकता है कि जब आपकी जो उनकी इंडस्ट्री है वो आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में लगे, क्योंकि सीपैक अगर आपका सिर्फ रोड नेटवर्क है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इसी रोड पे अगर आपके एक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाते हैं जहाँ चाइना की इंडस्ट्री रिलोकेट हो जाती है, तो दैट विल क्रिएट जॉब्स फॉर द लोकल पॉपुलेशन, दैट विल जनरेट एक्सपोर्टेबल
सरप्लस। वो तो अगले 5-6-10 साल का प्रोग्राम है ना, देखे ना पहले तो सड़क बनेगी फिर वो तो आगे की बात है। हमारा तो जो मसला आप बता रहे हैं ये तो अभी का है कि बजट एक तो बनना है और बजट में अपनी कंपल्शंस हैं, हर डेमोक्रेटिक हुकूमत की कंपल्शंस हैं, तो इनकी भी हैं माशाल्लाह, बिल्कुल मानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो बात है कि जो हमारे अंडरलाइंग ट्रेंड्स आ रहे हैं पीछे से, वो आगे को हमें मुझे लगता है इलेक्शन के बाद तो फिर शायद एक और रिफंड प्रोग्राम हम देखेंगे।
जी वो इसलिए जो आम ख्याल ये है कि जी तकरीबन 2019-20 and 2021 यू अपना आपका करंट अकाउंट बैलेंस विल अगेन बी इन प्रॉब्लम, आपके रिजर्व्स अगेन दे विल बी इन प्रॉब्लम, आप इधर यू विल गो वेरी हैवी मार्केट बोरोइंग, तकरीबन यू विल बी ट्रीटेड एज जंक बॉन्ड, और उसी लिहाज से प्रीमियम ज़्यादा होगा, और आप दोबारा फंड के प्रोग्राम में जाएंगे, और उसके बगैर आपका गुजारा इसलिए नहीं होगा कि आपकी डेट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंगली आपकी डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा बढ़
जाएगी। बताइए ये सब बातें मैं पहले भी सुन चुका हूँ, आप भी सुन चुके हैं, ठीक है जी, ये बातें मेरा ख्याल है मैं जब बच्चा था तब से सुन रहा हूँ, हर साल यही होता है कि बजट का प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर सकते, फिर करेंगे फिर फंड प्रोग्राम। भाई इसका निजात क्या है, हम क्या करें कि हम इस ट्रैप में से निकलें कि 2-3 साल के लिए हम फंड से बाहर निकलते हैं फिर वापस चल जाते हैं, फिर हम नारे लगाते हैं हमने बैगिंग बोल तोड़ दिया फिर वापस चल जाते हैं, तो बताइए इसका इलाज क्या है।
देखें इसका इलाज ये है कि हम सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द कंडीशनलिटीज ऑफ IMF। हम आज तक और अभी तक स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाए। वो आपको भी पता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज आपके एनर्जी का सेक्टर है, आप अभी तक उसको सप्लाई साइड पे तो आप इंक्रीज करते रहते हैं विच इज अ गुड साइन, बट जो उसके गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। अगर आप सप्लाई को बढ़ाते चले जाएंगे और आपको गवर्नेंस को एड्रेस नहीं करेंगे तो आपका सर्कुलर डेट मल्टीप्लाई करेगा
और बढ़ता जाएगा, ठीक है
बढ़ता चले। आप टैक्स के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं अभी तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। आज भी आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तकरीबन 69% ऑफ द टोटल टैक्सेशन है,
उसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्सेस भी कितने हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेस भी कितने हैं।
एग्जैक्टली आप बेसिकली 70% ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स इज अंडर विथहोल्डिंग टैक्स रेजिम, तो आप तकरीबन जो डिस्पोजेबल इनकम है टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो आपने छोड़ी नहीं है। आप इसी तरीके से उसके स्ट्रक्चरल इश्यूज को बावजूद इसके कि जी आपने जो बजट है वो बढ़ा दिया, उसका रेवेन्यू बढ़ा दिया पिछले 3 सालों में, फिर आप दूसरा ये कहते हैं कि जी आपकी जीडीपी जो है वो इट इज़ नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इसलिए इसको दोबारा रीबेस होना चाहिए। कल को रीबेस होकर वो 30% बढ़ जाएगी, योर टैक्स जीडीपी रेशियो विल अगेन बी 8%,
वो 6%
फिर आप कहेंगे 6% पे आ गए। तो आप दैट इज सेकंड एरिया जहां पर आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। एक्सपोर्ट के अंदर आपके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, आप ना मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हैं, ना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हैं।
राणा साहब, मैं आपको इतने आराम से नहीं जाने दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं, आप बड़े बड़े ओहदों में रहे हैं, ठीक है जी। मैंने भी कुछ अंदर से हुकूमत देखी। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि ये जो बातें हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, के बिजली का निज़ाम ठीक कर लें, रेलवे का निज़ाम ठीक कर लें, पीआईए का निज़ाम ठीक कर लें, और इतने निज़ाम हैं जो हमने ठीक करने हैं, हम बचपन टैक्स का निज़ाम ठीक कर लें, हम ये निज़ामों की बात करते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा राणा साहब, आप और मैं बच्चे से जब से ये बातें करते आ रहे हैं, अब माशाल्लाह उम्र हमारी काफ़ी पक्की हो गई है। अब ये क्या वजह है कि आप सेक्रेटरी फाइनेंस थे, चले मैं नहीं अपनी बात करता, आप सेक्रेटरी फाइनेंस थे, क्या वजह है कि ये हम इन चीज़ों के रिफॉर्म और इन चीज़ों के निज़ाम हम ठीक नहीं कर सक रहे, साल साल गुजर जा रहे हैं, बल्कि डेकेड्स गुजर गए।
देखें, इस वक्त मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि इस मुल्क के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन और बिजनेस ब्यूरोक्रेट नेक्सस बन चुका है, और वो नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है विद डीप पॉकेट्स कि आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं रिफॉर्म करने के लिए, वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होते हैं। आपको भी याद है कि 2012 में हमने पूरी कोशिश की कि जी टैरिफ रैशनलाइजेशन कर लें, उसकी कोई 10 मीटिंगें हुई, मीटिंगों के अंदर कुछ फैसले हुए, और उन फैसलों के बावजूद टैरिफ रैशनलाइजेशन नहीं हो सकी। बुनियादी वजह यह है कि टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए सारे एसआरओ का निज़ाम ख़त्म करना पड़ता है, एसआरओ के पीछे एक बहुत बड़ा माफिया बैठा। फिर सबसे बड़ा यह है कि टैरिफ रैशनलाइजेशन जो अप्रोच है फाइनेंस और कॉमर्स की, वो यह है कि ये आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। जो FBR की अप्रोच है कि जी हमारा रेवेन्यू मारा जाएगा, आप जब तक इस रेवेन्यू अप्रोच से नहीं निकलेंगे, आप कभी टैरिफ को ठीक।
पर राणा साहब मुझे बताइए, ये बातें ठीक है, पर मुझे बताइए कि मुझे तो जो हुकूमत में याद है वो ये है कि कोई हुकूमत में कोई ऐसे इदारे, मतलब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे ले लें, या प्लानिंग कमीशन ले लें, या FPR में ले लें, या एनर्जी मिनिस्ट्रीज में ले लें, हमारे पास कोई डेडिकेटेड रिसर्चर्स, कोई बंदे नहीं हैं जो बैठ के ऐसी चीज़ों पे लॉन्ग टर्म गौर कर रहे हैं, जो पोजीशन पेपर्स बना रहे हैं, जो हमें बताएं कि भाई इसका क्या करना है, ये क्या इनकी बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेटिक माफिया, दैट मीन्स कि सिविल सर्विस रिफॉर्म हमें बहुत ज़रूरी करना है, अगर नहीं करेंगे तो निज़ाम नहीं ठीक होगा, तो क्या सबसे बुनियादी रिफॉर्म वो है करने के लिए?
देखें जी, ये दोनों चीज़ें जो बेसिकली जो हमारी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं, हमने बड़ी कोशिश की, जब मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, तकरीबन 8 पेपर हमने भेजे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, इंक्लूडिंग द रिफॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एकेडमीज। आपको इस वक्त जो एकेडमियों में ट्रेनिंग दी जा रही है उसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ से। वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ना सिर्फ उसका जो इनटेक है उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए आपकी रिक्रूटमेंट के लिए। आप अब भी एक उस पुराने 100 साल निज़ाम पे चल रहे हैं कि आपने एग्ज़ाम ले लिया, और एग्ज़ाम की बेसिस पे जिसने अच्छा कर लिया वो फारसी और अरबी के साथ फर्स्ट पोजिशन पर आ गया, और उसको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म इज असेंशियल। 90% ऑफ द डिसीजंस टेकन इन द गवर्नमेंट वो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर के प्रॉम्प्टेड होते हैं, वो किसी ना किसी सियासतदान को, किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी ना किसी बिजनेसमैन को वो फेवर कर रहे होते हैं, इसलिए वो डिसीजन दे लिए जाते हैं। लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए ना कोई मैकेनिज्म है, ना कोई ऐसी कोशिश होती है, और अगर कोई कोशिश होती भी है तो उसको कहते हैं जी छोड़ दें जी, इसको क्या पता हो क्या एक्चुअल लाइफ अपना लाइफ में क्या होता है। सो देर इज नो रिसर्च। इनको मैंने ये कहा कि जी आप एक गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट से बाहर बल्कि पेपर बना के दिया کہ ایک اپنا کیپیسٹی بلڈنگ یا پبلک پالیسی کے نام سے یا تو یونیورسٹی بنا لیں جو اس کا جو صرف 10 یا 12 ڈسپلن کو کور کرے جس کی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے، یا پبلک پالیسی کے نام سے ایک تھنک ٹینک بنا دیں جو آپ کو پوزیشن پیپر ہر ایشو پہ بنا کے دے، بیکاز گورنمنٹ کے اپنے جو بیوروکریٹس ہیں دے آر آل دا ٹائم انوالوڈ ان فائر فائٹنگ، ان کے پاس نہ تھنکنگ پروسیس کا ٹائم ہے نہ ریفلیکشن کا ٹائم ہے، اور وہ دے آر موونگ فرام ون میٹنگ ٹو دا ادر میٹنگ۔
پر ہاں سب پھر پالیسی تو بنتی ہے نا، دیکھیں ہمارا بجٹ بھی بن جاتا ہے، ابھی میں نے سنا ہے کوئی فائنینشیل انکلوژن پالیسی بھی بنائی ہے، پھر اور بھی پالیسیز بنتی ہیں، آپ کے بھی ایل این جی کی پالیسی بنی، یہ کہاں سے آتی ہے؟
دیکھیں وہ پالیسی آتی ہے، اس پالیسیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پالیسیز کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اکنامک امپیکٹ کی ویلیویشن ہوئی ہو یا فائنینشیل امپیکٹ کی ویلیویشن ہوئی ہو یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ویلیویشن ہوئی ہو، یا پھر یہ ہے کہ پوری گلوبل مارکیٹ میں کس قیمت پہ مل رہی ہے، ہم کس قیمت پہ لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پالیسی بنتی ہے کہ بھائی کس کو کیا کتنا کیا اور کیا فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی یہ آپ کو یاد ہوگا، آپ ای سی سی میں تھے، کبھی وہ ٹریکٹر کے اوپر جی ایس ٹی 8% ہو جاتی تھی، کبھی وہ کبھی وہ 16% 15% ہو جاتی تھی، اسی طرح چینی پہ وہ کبھی 8% ہو جاتی تھی، کبھی وہ 15% ہو جاتی تھی۔ ایشو یہ ہے کہ کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں ہوتی کہ جی ہم نے اس کو بیٹھ کے ایک کنسیڈرڈ اپنا پالیسی لے کے جانی ہے جس کا فائدہ اکانومی کو ہو، جس کا فائدہ لارجر پبلک کو ہو، جس کا فائدہ نیچے ہو۔ اور اگر آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی پالیسی بھی بنا لی، وہ ڈونر 2002 سے بنا رہے ہیں فائنینشیل انکلوژن کی پالیسی، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر فائنینشیل انکلوژن کی پالیسی بنانے کے بعد آپ نے غریب کو قرضہ 22% پہ دینا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
نہیں، فائنینشیل انکلوژن کی پالیسی جو بنی تھی نا رانا صاحب، وہ ورلڈ بینک نے بنائی ہے، اسٹیٹ بینک نے پیش کی ہے، اس پہ کسی منسٹری نے کامنٹ نہیں کیا، اور وہ اسٹیٹ بینک نے بس پیش کر دی، وہ ہو گیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اسٹیٹ بینک نے کیوں پیش کی؟ بھائی فائنینشیل انکلوژن اسٹیٹ بینک کا کام نہیں ہے، اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے، وہ اپنی انڈسٹری میں انکلوژن کیسے ڈال سکتا ہے بھائی؟ انکلوژن تو کوئی اور کرے گا۔ یہ تو ہم حکومت میں سوچتے ہی نہیں کہ بھائی جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے، دیکھ رہے نا صاحب، آپ اگر بولنگ کرا رہے ہیں وکٹ کیپنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اسٹیٹ بینک کا کام نہیں۔ میں نے کہا جی یہ پلاننگ کمیشن بناتا ہے فائنینشیل انکلوژن کی پالیسی، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ باتیں ہم سوچتے ہی نہیں، اور کوئی ہمارا میڈیا بھی نہیں یہ باتیں سوچتا، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو میں بھی دیکھ چکا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اب بجٹ کا وقت آتا ہے، اب وہ ٹیکس کی پروپوزلز لے آئیں گے، کبھی کہیں گے جی وہ انٹرنیٹ کا ٹیکس بڑھا دیں، کبھی کہیں گے جی پینے کے پانی پہ لگا دیں، کبھی کہیں گے یہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایف پی آر میں کوئی ادارہ ہے جو ٹیکس پالیسی پہ بیٹھا ریسرچ کر رہا ہے، جو ان چیزوں پہ غور کر رہا ہے، یا صرف ہم ڈونر پہ ریلائی کرتے ہیں؟
نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو دو موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ اس وقت اجے اورنج ٹرین کو کے پروجیکٹ کو اٹھا دیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس اے رانگ پروجیکٹ، ٹھیک ہے جی، اچھا پروجیکٹ ہے، آپ اورنج ٹرین لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے، اس کی جو الٹرنیٹ آپشنس ہیں، وہ کہیں ایویلیوٹ ہوئی؟ کیا پاکستان ریلوے کو ٹھیک کرنا بہتر تھا یا اورنج ٹرین ٹھیک کرنا بہتر لگانا بہتر تھا؟ اس طرح کے کوئی الٹرنیٹ آپشن سینیریو ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، صرف ایک جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل مائلج کہاں سے ملے گا، اور وہ پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔
اور افسوس کی بات ہے رانا صاحب کے، رانا صاحب کی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا نظام ہے، جہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ نظام ہی مجھے یاد ہے کہ وہ ہارورڈ گروپ نے پلاننگ کمیشن بناتے ہوئے ہمارے لیے بنایا تھا، اور بہت کتابیں لکھی گئیں، اور بہت ہمارا پی سی ون جو ہے وہ کاسٹ بینیفٹ میجر کرنے کا، اپرچونیٹی کاسٹ میجر کرنے کا نظام ہے، ہم اس کو خود ہی نہیں فالو کرتے، ہم خود ہی نہیں فالو کرتے، عجیب بات نہیں ہے؟
نہیں نہیں وہ تو دیکھیں، جو آپ نے بھی 3 سال وہاں رہے ہیں، آپ کا جو پلاننگ کمیشن کا پورا نظام ہے وہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے۔ یہی پلاننگ کمیشن تھا جو 1960 سے لے کر 1990 تک بہترین پالیسیاں پروڈیوس کرتا رہا، بہترین پلان پروڈیوس کرتا رہا۔ آج آپ وہاں چلے جائیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی کسی چیز، ایک حکم ہوتا ہے اور وہ حکم کے تحت سارے پی سی ون आ जाते हैं और उस PC1 पे कोई एतराज भी नहीं करता। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर उससे 70s के अंदर और 80s के अंदर बेपना किताबें लिखी गई, बेपना लिटरेचर है।
बिल्कुल।
फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से वो आगे चल के वो गया इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट,
बिल्कुल,
सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, इसी तरह फाइनेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट, वो सारे वो कहीं पर भी किसी चीज का एनालिसिस होता ही नहीं है। बल्कि जो बेचारा कोई करने की कोशिश करता है उसको झाड़ पड़ जाती है कि आपने किससे पूछ के ये एनालिसिस इसमें डाला।
तो राना साहब, इन चीज़ों के बगैर तो बजट हमारा, जो हम हर साल बजट पे शोर मचाते हैं, तो हम तो सरसरी बात कर रहे हैं कि भाई कितने पैसे यहाँ खर्चने हैं, कितने पैसे वहाँ खर्चने हैं, फिर हम कहते हैं टैक्स का निज़ाम कैसे, कोई थोड़ा सा टैक्स बढ़ाना है, कहाँ से बढ़ाना है, बजट के पीछे कोई पॉलिसी नज़र आती है? मुझे तो पॉलिसी नहीं नज़र आती।
देखें, मैं इस मामले में अगर चाहे वो बड़ा सूबा है, फेडरल गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में उन्होंने इस दफ़ा ये किया है कि उन्होंने जो मार्च के अंदर अपना ADP का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया, उस ADP को फिर मुख्तलिफ सोर्सेस को भेजा गया फॉर पीयर रिव्यू, और उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि जी जो आपके डिपार्टमेंटल ADP है वो किस हद तक पॉलिसी से रिकनसाइल कर रहा है। अगर पॉलिसी से वो रिकनसाइल नहीं होता तो उन प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया जाए, और उसके अंदर काफी हद तक इंटरेक्शन हुआ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के साथ, PND के साथ, और उन्होंने उस जो रिपेयर रिव्यू हुआ उसके बाद काफी प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप किया जो पॉलिसी से अलाइन नहीं थे।
अच्छा,
उसकी मिसाल उसके मिसाल मैं आपको यह देता हूँ कि आप कहते हैं कि जी हमने सीट के अंदर या पेस्टिसाइड के अंदर या एक्सटेंशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना, आपने जब ADP को देखा तो पता चला जी उसमें तो एक भी स्कीम नहीं टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर। जब रिप्योर रिव्यू हुआ तो उसके बाद उन्होंने उसके अंदर 3 स्कीमें डाली जिसमें वो एक सीट से भी है मुतालिक, एक अपना एक्सटेंशन से मुतालिक है, और इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 6 स्कीमें डाली। तो आई थिंक कि पंजाब गवर्नमेंट ने तक इसमें काफ़ी हद तक लीड ली है, और फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर 3 प्रोविंसेस कैन फॉलो कि हम अपना जो ADP है उसको फरवरी में बना के पीयर रिव्यू के लिए भेजें कि वो आपकी पॉलिसी रिजीम के साथ रिकनसाइल हो सके, और ताकि जो आपके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। क्योंकि हमारे मुल्क में होता यह है कि ADP एक तरफ बन रहा होता है, पॉलिसी दूसरी तरफ बन रही होती है, और बीच में कोई रिकंसिलिएशन नहीं होती।
ओके, वेरी गुड। राणा साहब, मुझे एक और बात बताएं कि ये तो ठीक है, हो गया, पर ADB जो है, ADB तो बस एक एक किस्म का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारे मल्टी ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो मल्टी ईयर प्रोग्राम तो फंसे होते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने ओरिएंटेन की ट्रेन की बात की या और मेट्रोज की बात करें, ये बड़े प्रोजेक्ट्स तो अगर ये ठीक तरह ना हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ठीक तरह ना बनाए हों तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अपनी जगह होते हैं, ठीक है जी। पर दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि करंट एक्सपेंडिचर्स में भी तो हमें देखना चाहिए, करंट एक्सपेंडिचर्स में अगर काफ़ी मसले हैं तो वो इनएफिशिएंसीज आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इफेक्ट करेंगे और इवेंचुअली आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेंगे। क्या ये सही है एनालिसिस?
आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें अगर आप फेडरल ADP या प्रोविंशियल एनुअल डेवलपमेंट प्लान किसी सूबे को उठा के देखते हैं, आप इरिगेशन सेक्टर को इवेल्यूएट करें, इरिगेशन सेक्टर में तकरीबन 60% रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसका मतलब यह है कि चूंकि आपके करंट बजट में डिस्टॉर्शंस हैं, आप उनको प्रॉपर MNR का बजट नहीं देते, जिसकी या वो पिल्फरेज हो जाता है या लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस और रिपेयर को ठीक मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए वो पाकिस्तान का एक पुराना मॉडल चला आ रहा है 80s से, वो है बिल्ड इग्नोर रीबिल्ड। ठीक है जी।
अच्छा, बिल्ड इग्नोर रीबिल्ड, माशाल्लाह, ठीक ठीक। हाँ,
अगर आप अपने करंट बजट के अंदर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं वो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हैं कि जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी और वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और उसके जरिए वो अपनी बिल्डिंगों को या प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ जितनी मेंटेनेंस है या डेफर्ड मेंटेनेंस है वो आ जाती है आपके डेवलपमेंट बजट में, दैट क्रिएट्स डिस्टॉर्शंस। दूसरा ये है कि आपका जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो आके जब बाहर से लोग आते हैं तो वो आपके देखते हैं कि जी आपके अपने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपना अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसको क्या पॉलिसी रिजीम है जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब वो इस तरह की डिस्टॉर्शन देखते हैं तो वो फिर उनके लिए यही मसाइल होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। आप इंडस्ट्रीज को देख लें, वो कहते हैं कि जी ये हमारी ये है कि इस प्री लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और हम आपको जो है आप आएँ और इट्स वॉकिंग आप जाके इन्वेस्ट करें। जब वो सरजमीन पे जाते हैं तो पता चलता है 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन।
तो राना साहब देखिए मसला ये जो मसला फिर आप जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मसला है और इस पर मुझे जो हैरानगी होती है कि हमारा कोई इकोनॉमिस्ट गौर नहीं कर रहा। मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो रोज़ अखबार में आर्टिकल आ रहे होते हैं, जो रोज़ टी वी पर प्रोग्राम आ रहे होते हैं, माहिर इक्तसादियात जो आ जाते हैं, सीनियर तजियाकार, वो ये बातें करते ही नहीं हैं। वो ले दे के वो नंबरों में मिल जाते हैं और ये जो एक अजीब किस्म की बात आ गई है, जी डी पी बढ़ा दें बगैर सोचे समझे, बस बढ़ा दें, चलें जो उसको 100% बढ़ा दें, 30 ना बढ़ाएं, 40% बढ़ा दें, जो भी करें। मसला सिर्फ ये है कि जब अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने कहा है कि आपके एनर्जी में, आपके टैक्स में, आपके जनाब रेलवेज में, आपके हर सिस्टम में हैं, आपके ग्रेन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, ग्रेन प्रोडक्शन में, हर जगह में आपके मसले हैं और वो पुराने 100 साल 150 साल से चल रहे हैं, बिकॉज आपने निज़ाम को कोई ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। आप सोचते हैं ऊपर ऊपर से बजट दे के चल पड़ेंगे, तो ये तो खुदा रहा बड़ी मुश्किल काम है और आपके पास कोई सोचने वाले इदारे हैं ही नहीं। जो डोनर आगे कहता है या कोई बाहर से आगे कहता है आप कर देते हैं, तो ये तो बड़ी मुझे कोई ख़तरनाक बात लग रही है। कोई इसमें कोई मुझे रे ऑफ लाइट तो दिखाएं।
देखिए मैं आपको, अब हम बड़े आराम से अपनी गलतियों को पास ऑन कर देते हैं डोनर्स के ऊपर। डोनर्स आपका उस वक्त इंटरवीन करता है जब वो देखता है कि वैक्यूम है, जब वो देखता है कि लोकल लोग कोई काम नहीं कर रहे। अगर आप प्रोएक्टिव होकर पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो डोनर बिल्कुल आपकी बात सुनता है। ठीक है, मैं अब आप वीट प्रोक्योरमेंट को ले लें। आपकी पिछले 5 साल की 5 मिलियन टन वीट पड़ी हुई है, आप 7 मिलियन टन और प्रोक्योर कर रहे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त आपका जितना भी इसकी बैंक बारोइंग है वीट प्रोक्योरमेंट की, उसमें जो हर साल आप वीट सब्सिडी के लिए पैसा रखते हैं, 90% आपकी वीट सब्सिडी जाती है डेट सर्विसिंग में।
बिल्कुल सही।
बैंकों को आप बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं,
यानी कि बैंकों का एक और सर्कुलर डेट कमोडिटीज में पड़ा हुआ है, वो कितना होगा?
तकरीबन 550 अरब रुपया जो है वो इस वक्त वीट प्रोक्योरमेंट में लगा हुआ है और इस साल जो प्रोक्योरमेंट होगी वो इसके अलावा है।
चले, तो फिर मेरा मतलब कि ये तो कोई निज़ाम ना हुआ ना कि अगर आपका उधर भी एक खसारा है, सर्कुलर डेट एक एनर्जी में है, एक इधर भी आ गया, यहाँ भी बैंक, तो बैंकों की यशी हो रही है, बाकी तो मेरे ख्याल मुल्क में कुछ नहीं रह गया।
देखो ना, आप कोई ये नहीं देखता कि आपका जो हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे है 2013 का या उससे पहले का, आपका फूड कंजम्पशन ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग स्टेपल फूड से हाई वैल्यू अपना हाई न्यूट्रिशियस कंजम्पशन पे जा रहे हैं। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा, इसके ऊपर स्टडीज हैं बाकायदा और 3-4 पेपर छप चुके हैं कि जी आपके फूड कंजम्पशन बास्केट में चेंजेस हो रहे हैं। उस फूड कंजम्पशन बास्केट को रिकनसाइल करने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप 4 क्रॉप से निकल कर आप हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे जाएं। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे किसान के लिए पैसा भी ज़्यादा है, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा है और इसके ऊपर री इन्वेस्टमेंट भी वो दोबारा कर सकता है। लेकिन हम उस 4 क्रॉप के अंदर किस तरह फंसे हुए हैं कि हर साल हम इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप जितनी गंदम प्रोड्यूस करोगे हम उसमें से
वो हम नहीं फंसे हुए, वो हुकूमत ने फंसाया हुआ है, क्योंकि अगर आप उनको बार बार सब्सिडी देंगे तो वो बार बार लोग वही प्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है ना।
नहीं, लेकिन आपको आपको ये मैं बता दूं कि जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर तो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करता है, उसकी गंदम तो मार्केट में आती भी नहीं है। तो नेट बेनिफिशियरी जो है वो बड़ा ग्रोअर है, और वो जिसको सब्सिडी भी मिल जाती है, जिसको बारदाना भी मिल जाता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिल जाती है। लेकिन आप अर्बन को इस लिहाज से अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि चूंकि आप रूरल को सब्सिडाइज करते हैं, अर्बन वही गंदम का आटा जो है वो मार्केट, जो अगर नॉमिनल मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे 10 अपना 3 गुना महंगा आटा खरीदता। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इम्पोर्टेड वीट है वो लाहौर के अंदर इट कॉस्ट यू $210 पर मेट्रिक टन, जबकि लोकल वीट जो है वो आपकी $300 और $310।
राणा साहब, मसला ये है कि ये बड़े मसले हैं पॉलिसी के और बजट के हवाले से आपने बहुत सारी बातें खोल दी हैं और बहुत सारे हमारे सामने चीज़ें आ गई हैं, पर बात आके एक ही जगह मेरा ख्याल टिकती है कि हमें अब बहुत देर हो चुकी है, हमें हुकूमती निज़ाम, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो रिसर्च प्रोसेस है, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, जो आपके रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस है, जो आपका सोचने का निज़ाम है, जो आपका पॉलिसी में डिबेट करने का निज़ाम है, उस सब को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम अपनी गलतियां रिपीट करते जाएंगे। वो सब चेंज करने के लिए हमें ये सिविल सर्विस का रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है अगर आप इजाज़त दें तो हम एक अगला प्रोग्राम पूरा सिविल सर्विस रिफॉर्म पर रखेंगे।
बिल्कुल रख लेंगे।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच राणा साहब, थैंक यू वेरी मच।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।